तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसने 2002 में मतलब आते ही तहलका मचा दिया था।
जोनाथन सैफरन फोयर का पहला ही नॉवल।
हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड। और फोयर के उस वक्त सिर्फ 25 साल के थे, है
कमाल है।
ना? और उन्होंने जो कहानी बुनी वो किसी एक जॉनर में मतलब किसी एक शैली में फिट ही नहीं होते।
सही बात है, ये एक रोड ट्रिप कॉमेडी भी है, एक ऐतिहासिक खोज भी है।
और एक दिल तोड़ने वाली ट्रेजेडी भी, साथ में जादुई यथार्थवाद का तड़का अलग से है।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे अतीत की खोज हमें कभी-कभी खुद से मिला देती है।
बिल्कुल, और इस उपन्यास की सबसे खास बात है इसकी बनावट। इसमें एक नहीं बल्कि दो कहानियां एक साथ चलती हैं।
हाँ, जैसे दो धागे एक दूसरे में गुंथे हुए हों।
एकदम। तो पहली कहानी 1997 में शुरू होती है। जोनाथन सैफरन फोयर नाम का ही एक नौजवान यहूदी अमेरिकी लेखक यूक्रेन पहुंचता है।
यूक्रेन,
हाँ, उसका मिशन है ट्रेचिम रोड नाम के एक छोटे से गांव को खोजना।
ट्रेचिम ब्रोड, ये वही गांव है जहां से उसके पुरखे आए थे।
वही गांव जिसे 1942 में नाजियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था, मतलब नक्शे से ही मिटा दिया था।
और उसके पास सुराग के नाम पे कुछ खास है नहीं जहां तक मुझे याद है।
कुछ भी नहीं, बस एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर और ऑगस्टिन नाम की एक औरत का नाम।
अच्छा,
उसे बस इतना पता है कि शायद इसी औरत ने होलोकॉस्ट के दौरान उसके दादा की जान बचाई थी। तो वो एक, आप कह सकते हैं, एक लगभग नामुमकिन खोज पर निकला है।
अपने परिवार के बिखरे हुए इतिहास को जोड़ने के लिए।
बिल्कुल।
तो जोनाथन यूक्रेन पहुंचता है एक तस्वीर और एक नाम के सहारे, लेकिन ऐसे अनजान देश में अकेला तो ये सब नहीं कर सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में वो मजेदार किरदार आते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे।
हाँ,
उसकी मदद के लिए एक लोकल टूरिस्ट एजेंसी उसे एक टीम देती है। इस टीम में है एलेक्स परचोव, जो उसका ट्रांसलेटर है।
एलेक्स जो अमेरिकी पॉप कल्चर का दीवाना है।
हाँ, और बहुत ही मजेदार टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है। फिर हैं एलेक्स के दादा, जो गाड़ी के ड्राइवर हैं। वो बहुत चिड़चिड़े हैं, शायद यहूदियों को पसंद भी नहीं करते।
और सबसे अजीब बात, वो अंधे होने का नाटक करते हैं।
हाँ, वो अंधे होने का नाटक करते हैं, और साथ में उनका एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है सैमी डेविस जूनियर। जूनियर।
क्या टीम है।
तो ये तीनों मिलकर जोनाथन को यूक्रेन के देहाती इलाकों में लेकर निकलते हैं।
आपने एलेक्स की टूटी फूटी अंग्रेजी का जिक्र किया और वो तो इस किताब की आत्मा है। वो सिर्फ ग्रामर की गलतियां नहीं करता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
जैसे एक जगह वो कहता है, द कार इज रिजिड विद सोरो, यानी कार दुख से कठोर है।
हाँ।
ये सुनने में तो मजेदार है, लेकिन ये सिर्फ एक गलती नहीं है, है ना? ये व्याकरण से ज्यादा गहरी सच्चाई बता रहा है
बिल्कुल।
कि उस सफर में सचमुच इतना दुख था कि गाड़ी भी भारी हो गई थी।
हाँ, यही तो इस उपन्यास की खूबसूरती है। फॉयर हमें दिखाते हैं कि कभी कभी जो भाषा टूटी हुई होती है वो भावनाओं को सही भाषा से बेहतर बयां कर पाती है।
एलेक्स के शब्द सीधे दिल से आते हैं, किसी नियम की किताब से नहीं।
एकदम। और ये पूरी कहानी हमें एलेक्स के लिखे खतों से ही पता चलती है, जो वो जोनाथन को वापस अमेरिका लौटने के बाद लिखता है।
तो एक तरह से ये दो लेखकों की कहानी बन जाती है।
बिल्कुल।
अच्छा, ये तो हुई पहली कहानी जो वर्तमान में चल रही है, लेकिन आपने कहा था कि दो कहानियां साथ चलती हैं, वो दूसरी कहानी क्या है?
दूसरी कहानी वो नॉवल है जो जोनाथन का किरदार खुद लिख रहा है।
अच्छा, नॉवल के अंदर एक और नॉवल।
हाँ, ये ट्रेंचिम्ब्रॉड गांव का एक काल्पनिक इतिहास है जो 1791 से शुरू होता है, और इसकी शुरुआत भी बहुत जादुई है।
कैसे?
गांव के पास नदी में एक बच्ची बहती हुई मिलती है, और वहीं से उसके वंश यानी जोनाथन के पुरखों की कहानी शुरू होती है। ये कहानी 1500 साल का सफर तय करती है।
और इसमें गांव के बड़े अतरंगी लोग हैं जहां तक मुझे याद है।
बहुत उनकी प्रेम कहानियां हैं, उनके अंधविश्वास हैं, और ये सब कुछ जादुई यथार्थवाद की शैली में लिखा गया है।
लेकिन इस जादुई दुनिया पर हॉलोकॉस्ट के काले बादल भी तो मंडराने लगते हैं।
हाँ, जैसे जैसे ये कहानी 20वीं सदी की तरफ बढ़ती है, वो खुशी, वो जादू, वो सब फीका पड़ने लगता है।
तो एक तरफ असलियत की खोज है और दूसरी तरफ कल्पना से अतीत को फिर से जिंदा करने की कोशिश। ये दोनों कथाएं एक दूसरे पर असर डालती होंगी।
बहुत गहरा असर डालती हैं। जोनाथन की लिखी कहानी में जो किरदार हैं उनकी झलक उसे एलेक्स और उसके दादा में दिखने लगती है।
और यूक्रेन में जो उसके अनुभव होते हैं
वो उसकी लिखी जा रही कहानी को बदलने लगते हैं। असल में उपन्यास यही सवाल उठाता है कि इतिहास क्या है? क्या वो सिर्फ तारीखें और तथ्य हैं जो किताबों में लिखें, या वो एक कहानी है जिसे हम अपनी यादों, अपनी कल्पनाओं और अपनी जरूरतों के हिसाब से गढ़ते हैं।
और इस सफर के किरदारों का भावनात्मक सफर भी उतना ही अहम है, जैसे जोनाथन जो एक शांत ऑब्जर्वर जैसा है।
हाँ, जो अपने परिवार की यादों को जिप लॉक बैग में सहेज कर रखता है।
वो एक हीरो की कहानी खोजने निकला है, लेकिन उसे जो मिलता है वो बहुत उलझावा और दर्दनाक है।
लेकिन मेरे ख्याल से असली दिल तो दादा के किरदार में छिपा है।
हाँ बिल्कुल,
उनका वो गुस्सा, वो यहूदी विरोधी बातें, वो अंधे होने का नाटक। शुरू में लगता है कि वो बस एक सनकी बूढ़े हैं,
लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि ये सब एक कवच है, एक ढाल।
बिल्कुल, उन्होंने 50 साल से अपने अंदर एक भयानक राज दबा रखा है। उनका अंधापन शारीरिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है।
वो अपने अतीत की सच्चाई को देखने से इनकार कर रहे हैं।
बिल्कुल,
मतलब जख्म जितना गहरा होता है उसे छिपाने के लिए बनाई गई दीवार भी उतनी ही मजबूत होती है। तो ये यात्रा शुरू तो मजेदार ढंग से होती है, लेकिन फिर इसका मिजाज बदलता है।
हाँ, शुरू में कल्चरल शॉक है, भाषा की वजह से पैदा हुआ ह्यूमर है, लेकिन जैसे जैसे वो यूक्रेन के खाली वीरान इलाकों में आगे बढ़ते हैं, वो मजाक और हल्कापन गायब होने लगता है
और उसकी जगह एक बेचैनी और तनाव ले लेता है।
हाँ, उन्हें ट्रीचमेंट रोड का कोई नामो निशान नहीं मिलता, कोई नहीं जानता कि ऐसा कोई गांव कभी था भी।
और इसी बीच एलेक्स के खतों से हमें उसके घर की परेशानियां भी पता चलती हैं।
हाँ, कि उसका पिता हिंसक है, माँ चुप रहती है, और वो अपने छोटे भाई को इस सब से बचाने की कोशिश कर रहा है।
तो बाहर की खोज के साथ साथ किरदारों के अंदर का संघर्ष भी गहराता जाता है।
बिल्कुल, और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहाँ उपन्यास का शीर्षक एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड, यानी सब कुछ रोशन हो जाता है, सही मायनों में सामने आता है।
बिल्कुल, जब वो लगभग हार मान चुके होते हैं, लौटने की तैयारी में होते हैं, तब उनकी मुलाकात होती है लिस्टा नाम की एक बूढ़ी औरत से।
लिस्टा,
वो एक जर्जर से घर में रहती है और उसने उस इलाके के तबाह हो चुके यहूदी गांवों की यादों का एक म्यूजियम सा बना रखा है।
टूटी हुई तस्वीरें, पुराने बर्तन, फटे हुए कागज। हाँ, और वो बताती है कि वो लोग ट्रेचम रोड की ही जमीन पर खड़े हैं। अब वहां सिर्फ एक खुला मैदान और एक स्मारक पत्थर है,
और वो उस नरसंहार की इकलौती जिंदा गवाह है।
हाँ, और फिर एक एक करके वो सारे राज खोल देती है।
तो ये लिस्टा नाम की महिला जोनाथन की पूरी कहानी की बुनियादी हिला देती है। वो ऑगस्टिन के बारे में क्या बताती है?
वो पहला बड़ा रहस्य खोलती है। वो बताती है कि जोनाथन के दादा सैफरन वाकई बचकर निकल गए थे।
अच्छा,
लेकिन ऑगस्टिन नाम की किसी महिला ने उनकी मदद नहीं की थी। ये कहानी शायद परिवार ने खुद को तसल्ली देने के लिए गढ़ ली थी।
और वो तस्वीर जो जोनाथन के पास थी,
वो ऑगस्टिन की नहीं बल्कि लिस्टा और उसके परिवार की है, जो नरसंहार से ठीक पहले ली गई थी।
ये तो जोनाथन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जिस कहानी की नींव पर उसने पूरी यात्रा शुरू की थी, वो नींव ही खोखली निकली।
बिल्कुल, लेकिन कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला सच तो अभी बाकी था।
हाँ,
दूसरा और सबसे विनाशकारी रहस्य उद्घाटन तब होता है जब लिस्टा दादा को पहचान लेती है।
ओ,
वो बताती है कि नरसंहार वाले दिन नाजी कमांडर ने दादा को, जो उस वक्त एक जवान लड़के थे, एक भयानक चुनाव करने पर मजबूर किया था।
क्या?
उसने कहा, तुम अपने सबसे अच्छे यहूदी दोस्त की पहचान बताओ तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे।
हे भगवान!
और दादा ने डर के मारे अपने सबसे अच्छे दोस्त हर्षिल की तरफ इशारा कर दिया और नाजियों ने हर्षिल को वहीं मार दिया।
ये तो दिल तोड़ने वाला सच है। मतलब उनका वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो अंधे होने का नाटक,
वो सब 50 साल के अपराध बोध का बोझ था।
ये सोचना भी मुश्किल है कि उस एक पल के धोखे का वजन वो पूरी जिंदगी ढोते रहे।
यही वो अपराध बोध है जिसे दादा अपनी पूरी जिंदगी अपनी चुप्पी और अपने अंधेपन के पीछे छुपाते रहे।
और इस सच्चाई के सामने आने के बाद
सब कुछ टूट जाता है। कुछ दिनों बाद जब जोनाथन अमेरिका लौट जाता है, तो एलेक्स उसे खत में लिखता है कि उसके दादा ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा था, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ जिसने एक बुरा काम किया है।
और ये एक लाइन इस पूरे उपन्यास के सबसे मुश्किल सवाल को सामने रख देती है। क्या एक भयानक काम करने के बाद भी कोई इंसान अच्छा रह सकता है? क्या किसी गुनाह की माफी मिल सकती है?
उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता।
नहीं देता,
लेकिन ये अनुभव एलेक्स को हमेशा के लिए बदल देता है। अपने दादा की ट्रेजेडी उसे अपने परिवार के हिंसा के चक्र को तोड़ने की हिम्मत देती है।
वो पहली बार अपनी हिंसक पिता के खिलाफ खड़ा होता है।
हाँ, वो फैसला करता है कि वो चुप्पी और हिंसा की विरासत को अपने छोटे भाई तक नहीं पहुंचने देगा।
तो जहाँ एक कहानी खत्म होती है, वहीं दूसरी को एक नई शुरुआत मिलती है।
बिल्कुल, उपन्यास के अंत तक जोनाथन और एलेक्स के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो अतीत के अंधेरे में की गई एक साझा यात्रा से बना है।
रिश्ते पर एक गहरी टिप्पणी है।
हाँ, हमने देखा कि कैसे इतिहास कोई फैक्ट बुक नहीं बल्कि एक कहानी है जिसे हम चुनते हैं, बनाते हैं और कभी कभी खुद को बचाने के लिए भूल जाते हैं।
और जेनरेशनल ट्रॉमा का विषय भी बहुत मजबूती से उभरता है। होलोकॉस्ट का आघात सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहा जिन्होंने उसे झेला।
दादा का अपराध बोध जहर की तरह उनके पूरे परिवार में फैल गया। एलेक्स का हिंसक पिता उसी क्रूर इतिहास की पैदावार है।
और चुप्पी उस जख्म को भरने नहीं देती बल्कि उसे और गहरा करती जाती है।
सही बात है।
और अंत में भाषा का सवाल, क्या भाषा होलोकॉस्ट जैसी भयावहता को बयान कर सकती है? शायद नहीं।
शायद इसीलिए जोनाथन की जो काल्पनिक कहानी है वो नरसंहार के ठीक पहले आकर रुक जाती है।
हाँ, कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि शब्द उन्हें पकड़ नहीं पाते।
और शायद इसीलिए एलेक्स की टूटी फूटी भाषा हमें ज्यादा सच्ची लगती है क्योंकि वो अपनी सीमाओं को छिपाती नहीं। दादा की कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि बड़ी बड़ी ऐतिहासिक त्रासदियों के पीछे हमेशा इंसानों के व्यक्तिगत चुनाव होते हैं।
डर के पल, कमजोरी के पल,
प्रेम और धोखे के पल। इतिहास कोई हवा में घटने वाली चीज नहीं है, वो दादा और हर्षल जैसे लोगों के मुश्किल फैसलों का ही नतीजा है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े ऐतिहासिक त्रासदियों के पीछे व्यक्तियों की निजी कहानियां होती हैं, प्रेम, समझौते और असफलताओं की कहानियां।
और ये भी कि अतीत का सामना करना, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, खुद को और दूसरों को समझने के लिए जरूरी है। सच ने दादा को नष्ट कर दिया, लेकिन उसी सच ने एलेक्स को आजाद भी किया।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।